समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं आज सवेरे के एक और अंक के साथ। मैं हूं फरहतनाज और मेरे साथ हैं नीना, और अगले आधे घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें।
हेलो फरहत एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 11th December 2024।
जी बिल्कुल नीना, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का दौर जारी है, और ऐसे में भारत जो है वो भारी संख्या में पर्यटक जो है वो यहां पर आ रहे हैं। और इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाने माने कवि सुब्रमण्य भारती की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह भी जारी करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति आज पंचायत पुरस्कार भी प्रदान करेंगी, तो आगे हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आज हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और पंडित रविशंकर जैसी शख्सियतों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं अहम खबरों का।
Prime Minister Narendra Modi will interact with young innovators at the grand finale of the Smart India Hackathon 2024 via video conferencing today. Union Minister for Education Dharmendra Pradhan will virtually inaugurate the grand finale of 7th edition of the hackathon, which will begin at 51 centres across the country today. Over 1,300 student teams will participate at the grand finale.
जी नीना, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर क्या है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में छात्रों की टीमें मंत्रालयों, विभागों और उद्योगों द्वारा दी गई समस्याओं पर काम करती हैं। यह राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी पर भी स्टूडेंट इनोवेशन कैटेगरी में अपने आइडियाज पेश करते हैं। ये क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा पर काम करते हैं, आपूर्ति श्रृंखला और रसद होते हैं, स्मार्ट प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं। इसके अलावा स्थिरता, शिक्षा और कौशल विकास, जल, कृषि और खाद्य, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। और इस साल के एडिशन में कुछ दिलचस्प समस्याओं में इसरो द्वारा प्रस्तुत चंद्रमा पर गहरे क्षेत्रों की छवियों को बढ़ाना, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एआई, सैटेलाइट डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और गतिशील मॉडल का उपयोग करके रियल टाइम में गंगा जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली विकसित करना है। तो ये जो है इनोवेशन एक हर जगह पर आयोजन किया जा रहा है इसका, और बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें कि जो छात्र हैं वो अपना विकास कर सकेंगे।
Yes. Defense Minister Rajnath Singh called on Russian President Vladimir Putin in Moscow yesterday. During the meeting, Mr. Singh mentioned the friendship between India and Russia, saying New Delhi has always stood by its Russian friends and will continue to do so in future. The Defense Ministry said in a statement, the two leaders discussed various issues of bilateral defense cooperation. They expressed that partnership between two nations holds immense potential and combined efforts will pave way for remarkable outcomes. Earlier, the defense minister co-chaired the 21st meeting of India-Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation with his Russian counterpart Andrei Belousov in Moscow.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों को दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। समारोह के दौरान पंचायती राज मंत्री पुरस्कार विजेता पंचायतों की नवाचारी और प्रभावी कार्य प्रणालियों पर एक पुस्तिका का अनावरण करेंगे। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य अन्य पंचायतों को श्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करना और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में योगदान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपने आवास पर महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह जारी करेंगे। श्री भारती के लेखन ने लोगों में देशभक्ति की भावना और भारतीय संस्कृति तथा देश की आध्यात्मिक विरासत को आम लोगों तक पहुंचाया। उनकी संपूर्ण रचनाओं का 23 खंडों का संग्रह सीनी विश्वनाथन द्वारा संकलित और संपादित किया गया है। इसमें सुब्रमण्य भारती के लेखन के संस्करणों, व्याख्याओं, दस्तावेजों, पृष्ठभूमि की जानकारी और दार्शनिक वार्षिक प्रस्तुति आदि का विवरण भी शामिल है। तो नीना, इस पर हम आगे बात करेंगे और तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
श्योर। The Lumbini Museum, located inside the UNESCO World Heritage Sites of Sacred Garden area in Lumbini, Nepal, is designed to show the significance of the site as the birthplace of Buddha. It was designed by the Japanese architect Kenzo Tange. This is a significant example of India and Nepal's shared cultural heritage. Here's a report from Kathmandu correspondent.
Lumbini Museum features artifacts and earthenware from the first century. Here, statues and other artwork show important Buddhist iconography. There are traditional dresses and ceremonial items on display, which are associated with the history and culture that have emanated from Lumbini. This is a contemporary museum dedicated to the Buddha and his birthplace, aimed to elevate the experience of Nepal's sacred site. In 2023, Lumbini Museum received approximately 1.2 million visitors. The largest number of tourists in Nepal are coming from India. The number of visitors to the museum is expected to increase after functioning of Gautam Buddha International Airport, which has improved access to the area. As a development partner of Nepal, India offered a grant of rupees 5.9 crore for the construction of museum building at Lumbini, which was inaugurated by then Prime Minister of Nepal, Sher Bahadur Deoba, in presence of Minister of State for External Affairs of India, Rao Indrajit Singh, on November 30, 2004. Buddhism is a cultural and spiritual shared heritage between two neighbors, which is strengthened by infrastructure projects like Lumbini Museum. Shweta Singh for Akashwani News, Lumbini.
वहीं नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का 25वां संस्करण कल समाप्त हो गया। 10 दिनों तक चले इस जीवन सांस्कृतिक और संगीतमय उत्सव का समापन नागा हेरिटेज गांव किसामा में भव्य समारोह के साथ हुआ। ये त्यौहार हॉर्नबिल को श्रद्धांजलि देता है, जो नागा लोगों के लिए सबसे अधिक प्रशंसनीय और पूजनीय पक्षी है, जो अपनी सतर्कता और भव्यता के गुणों के लिए जाना जाता है।
China has decided to impose visa restrictions on U.S. personnel over interference in Hong Kong affairs. The decision comes in response to the recent U.S. announcement to impose visa restrictions on officials of the Hong Kong Special Administrative Region government. Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning made the announcement yesterday at a regular press briefing in Beijing.
सीरिया में सरकार ने वहां से 75 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल हैं, जो सैयदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित लेबनान पहुंच गए हैं और अब उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से वे भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारतीयों को सुरक्षित निकालने का समन्वय दमिश्क और बेरूत स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा किया गया है।
In the World Squash Team Championship 2024, the Indian women's team will face Australia in the pre-quarter-final fixture in Hong Kong, China today. The match is scheduled to start at 9:30 a.m. IST. Indian women defeated Italy 3-0 yesterday to enter the pre-quarter-finals.
जी नीना, और बात अगर की जाए महिला क्रिकेट की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय महिला क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:50 से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला में 2-0 से आगे है। उसने पहला मैच 5 विकेट से और दूसरा 122 रन से जीता था। दोनों मैच ब्रिस्बेन में खेले गए थे। खेलों के बाद अब मौसम का रुख कर लेते हैं। पहाड़ों में बर्फबारी से उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कराईकल, पुदुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा के कई क्षेत्रों में आज भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर में 13 दिसंबर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है।
Wildlife officials in Kanyakumari and Tirunelveli districts discovered an olive ridley sea turtle nest along their coastline, a rare occurrence given the region's geography. Typically, olive ridley turtles migrate from Sri Lanka to Odisha for mass nesting, with some laying eggs along Tamil Nadu's east coast. However, they tend to avoid the rocky stretches of Tirunelveli and Nagarkoil. We have another news from the city. Greater Chennai Corporation has now floated tenders to hire a consultant to create a parking policy specific to the neighbourhood. The new parking policy will restrict private vehicle parking in T Nagar through hefty on-street parking charges, congestion tax and creation of parking and no parking zones in interior roads.
जी नीना, चेन्नई के बाद अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त अश्विनी कुमार ने निगम विद्यालयों की 250 मेधावी छात्राओं बैंकिंग सीएसआर पहल उम्मीद के सहयोग से साइकिलें वितरित की हैं। साइकिल वितरण शिविर का आयोजन निगम प्राथमिक विद्यालय आरकेपुरम सेक्टर 6 में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त अमित कुमार शर्मा और अपर आयुक्त वीर सिंह यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण वहां पर उपस्थित रहे। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखक विष्णुकांत शास्त्री के रचना का विमोचन किया। इसका प्रकाशन साहित्य अकादमी ने किया है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और साहित्य को आगे बढ़ाने में विष्णुकांत शास्त्री के योगदान की सराहना की। श्री प्रधान ने यह भी बताया कि किस तरह से लेखक ने कई व्यक्तियों, संस्थाओं और देश को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये पुस्तक बहुत प्रासंगिक है।
Moving to Bengaluru, the National Highways Authority of India, NHAI, has issued a caution to motorists using the toll-free stretch of the Bengaluru-Chennai Express, which is yet to be officially inaugurated. Officials have advised motorists to exercise caution and maintain safe speeds while travelling on the newly constructed section between Hoskote and Bethamangala. This 71-kilometre stretch, forming part of the 260-kilometre express was recently completed in Karnataka. The remaining portions of the expressway spanning Andhra Pradesh and Tamil Nadu are expected to be completed by August 2025.
नीना, बेंगलुरु के बाद महाराष्ट्र का रुख करते हैं। सातवें स्मार्ट इंडिया हैकाथन का ग्रैंड फिनाले आज देशभर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा, जिसमें महाराष्ट्र के 4 केंद्र मुंबई, पुणे, नागपुर और कोल्हापुर शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्रों की टीमें भाग लेंगी। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो ने कई स्कूलों के छात्रों के लिए नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में एक जानकारीपूर्ण दौरा आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को मानकों के पीछे विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी भूमिका से परिचित कराना था। भाग लेने वाले स्कूलों में अंजुर सेकेंडरी स्कूल, अनुमित आश्रम स्कूल तलवंडी, बीएच अग्रवाल विद्यालय कसारा और ज्ञानदीप विद्यालय गेगाव नंदवाल शामिल थे।
Now, Farhat, here's some news from Hyderabad. IIT Hyderabad and Vardhaman College of Engineering in Hyderabad will be hosting the 7th edition of Grand Finale of the Smart India Hackathon, which will begin in a short while. About 400 participants in 57 teams from all over the country are taking part in the 36-hour-long software edition of the hackathon, and they work for software solutions on real-world challenges relating to agriculture, earth sciences and allied areas.
और महानगरों में अब बारी है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री सोवनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा है कि विधानसभा में सवालों के जवाबों को लेकर मीडिया में कवरेज कम हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले सवाल जवाबों को लेकर खबरें अखबारों में छपती थीं। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। इसके जरिए आम लोग जान सकते हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में कैसा काम कर रहे हैं। विधायक भी इसके जरिए मुद्दा उठा सकते हैं और आजकल विधानसभा की कवरेज भी कम हो गई है, तो ये सब बातें उन्होंने जो है वो विधानसभा में उठाई।
Now, here's some weather news. Chennai is expected to have generally cloudy sky with heavy rain. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Bengaluru is expected to have mist. The minimum temperature was 19 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 19 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius. And Farhat, what do we have from Delhi, Mumbai and कोलकाता।
जी नीना, सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज हल्का कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई की बात करें तो वहां पर आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये तो थी बात महानगरों के मौसम की, और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 11 दिसंबर 2024, तो क्या है इतिहास में सबसे पहले?
In 1687, Madras' first presidency chartered with a mayor's court as a municipal corporation.
और आज ही के दिन 1946 में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और पोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। वहीं 1941 में जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।
In 1958, Wilson Jones became India's first individual world champion when he won the amateur billiards championship.
और वहीं 1946 में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था।
In 1968, Indian-born Hargobind Khurana receives a Nobel Prize for medicine and physiology.
1960 में बाल विकास में लगी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के सम्मान में 1960 में आज ही के दिन 15 नए पैसे का विशेष डाक टिकट जारी किया गया।
In 1999, Dr. M.L. Madhu, poet and translator, won the Pushkin Gold Medal Award.
और अब आइए अब अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और याद करते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के महान कवियों में से एक, जिन्होंने तमिल भाषा में काव्य रचनाएं की, सुब्रमण्यम भारती की। इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। भारती एक जुझारू शिक्षक, देश प्रेमी और महान कवि थे। देश प्रेम की कविताएं इनकी श्रेष्ठ रहीं और इनको भारती उपनाम से भी पुकारा जाने लगा। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती ऐसे साहित्यकार रहे जो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे, जबकि उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में आम लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। ये एक ऐसे महान कवियों में से एक थे जिनकी पकड़ हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं पर थी, पर तमिल उनके लिए सबसे प्रिय और मीठी भाषा थी। उनका गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार था। इसके अलावा सुब्रमण्यम कई भाषाओं के जानकार रहे। उनकी रचनाओं में आम आदमी बसता था, स्वदेश, गीतांजल और जन्मभूमि उनके देशभक्ति पूर्ण काव्य माने जाते रहे हैं।
Yes, the songs and poems composed by Bharati are very often used in Tamil cinema and have become staples in the literary and musical repertoire of Tamil artists throughout the world. He paved the way for modern blank verse. Today is the death anniversary of Pandit Ravi Shankar. He was an Indian sitarist and composer.
जी हाँ बिल्कुल नीना, विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्कृष्टता के सबसे बड़े उद्घोषक रहे रविशंकर। एक सितार वादक के रूप में इन्होंने ख्याति अर्जित की। रविशंकर और सितार मानो एक दूसरे के लिए बने हो। वो एक इस सदी के सबसे महान संगीतज्ञों में गिने जाते थे। रविशंकर को विदेशों में बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। विदेशों में वे अत्यंत लोकप्रिय और सफल भी रहे। इसके अलावा अलाउद्दीन खान जैसे अनुभवी गुरु की आंखों ने आपके भीतर छिपे संगीत प्रेम को पहचाना।
In fact, one of the books named My Favorite Place on Earth by Dun, Jerry, Camarillo, Ravi Shankar stated that, I quote, sitting at home now in Southern California at the age of 88, surrounded by beautiful greens, multicolored flowers, blue sky, clean air and the Pacific Ocean, I often reminisce about all the wonderful places I have seen in the world. I cherish the memories of Paris, New York and a few other places, but Varanasi seems to be etched in my heart. That is Pandit Ravi Shankar. Sam Cooke, American singer, died on this day. He was an American singer and songwriter, considered one of the most influential soul artists of all time. Cooke is commonly referred to as the King of Soul for his distinctive vocals, pioneering contributions to the genre and significance in popular music. Here is a soulful song, You Send Me by Sam.
Darling, you send me. I know you send me, darling.
honest you do. Oh, you thrill me.
Today is the birth anniversary of Rajneesh, also known as Osho, who was an Indian godman and founder of Rajneesh movement. During his lifetime, he was viewed as a controversial new religious movement leader and mystic. Rajneesh emphasized the importance of meditation, mindfulness, love, celebration, courage, creativity, and humor, qualities that he viewed as being suppressed by adherence to static belief systems, religious tradition, and socialization.
और आज भारतीय गीतकार और संगीतकार आनंद शंकर का जन्म हुआ था। वे विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भतीजे रहे। इन्होंने अपने जीवन काल में पूर्वी संगीत शैलियों में पश्चिमी संगीत शैली का उत्कृष्ट मिश्रण कर संगीत को एक नया रूप दिया। सन 1990 के दशक के मध्य जब डीजे की संस्कृति का प्रचलन प्रारंभ हुआ तो आनंद शंकर ने भी डिस्को के अनुरूप संगीत का निर्माण किया। वर्ष 1996 में ब्लू नोट्स के अंतर्गत ब्लू जूस वॉल्यूम 1 नामक नए एल्बम का निर्माण किया गया। इसके दो संस्करण लॉन्च हुए, स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम्स।
Today is the birthday of Vishwanathan Anand. He is an Indian chess grandmaster and a former world chess champion. He became the first grandmaster from India in 1988. Anand held the FIDE World Chess Championship from 2000 to 2002, thus becoming the first Asian to do so. He became the undisputed world champion in 2007 and defended his title against Vladimir Kramnik in 2008. He then defended his title in the World Chess Championship 2010 against Veselin Topalov and in the World Chess Championship 2012 against Boris Gelfand. Anand was also the first recipient of the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 1991-92, India's highest sporting honour in 2007. He was awarded India's second highest civilian award, the Padma Vibhushan, making him the first sportsperson to receive the award.
और आज ऐसे भारतीय अभिनेता का जन्म हुआ जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनकी सादगी ने कई दशकों तक लोगों को अपना दीवाना बनाया। मुगले आजम में सलीम की कड़कदार आवाज हो या फिर फिल्म गोपी में सीधा साधा गांव का वासी, हर किरदार को दिलीप कुमार ने दिल से दिया। जी हाँ, बात करें हैं दिलीप कुमार की, तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म मुगले आजम से ये डायलॉग।
मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है।
कहाँ है वो?
कौन?
असबर आजम, जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी सीने में घोंट दी जाती हैं।
अदब से बात करो सलीम।
एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
तो फिर मासूम अनारकली को भी कैद करने के बजाय यही अजीम शान सजा दीजिए।
हमारे फैसलों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं।
लेकिन मुझे अपनी जान पर इख्तियार है। अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैदखाने की ये रात अनारकली पर नहीं, अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरेगी।
Dilip Kumar was also a great music enthusiast and also learned how to play the sitar for a film, Farhad.
जी बिल्कुल नीना, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमति, यहूदी, पैगाम, राम और श्याम जैसी फिल्मों के सलोने नायक दिलीप कुमार स्वतंत्र भारत के पहले दो दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे।
एंड सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम द लेजेंडरीज लाइफ इज दैट ही लव्ड क्रिकेट एंड प्लेड इट ऑफन। ही लेड अ क्रिकेट टीम अगेंस्ट राज कपूर इन अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच हेल्ड फॉर चैरिटी। बोथ ग्रोइंग अप इन पेशावर एंड इन बॉम्बे, दिलीप कुमार एंड हिज फैमिली हैड अ क्लोज relationship with the Kapoor family. Dilip Kumar was awarded Padma Vibhushan by Home Minister Rajnath Singh, Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis and Governor C. Vidyasagar Rao.
जी नीना, और शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार एक अच्छे पटकथा लेखक भी थे और अपनी इस प्रतिभा का प्रदर्शन इन्होंने फिल्म लीडर में किया था। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की कुछ फिल्मों के सदाबहार गाने।
दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले तो तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले ले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है।
जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी।
हर करम अपना करेंगे ऐ सनम तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए।
जमशाद सतरकार, नोन बाय हिज स्टेज नेम आर्या, इज एन इंडियन फिल्म एक्टर एंड प्रोड्यूसर हु मेनली अपियर्स इन तमिल फिल्म्स बिसाइड्स अपियरिंग इन अ नंबर ऑफ मलयालम, तेलुगु एंड कन्नडा प्रोडक्शंस। Arya has won the Filmfare Award for Best Male Debut South and received 2 nominations each for Filmfare Awards and Vijay Awards. Here is a song from his movie Boss, Yarinda.
Yarinda pendan endru kettin munnale ival kendan paadi endru kanden thannale ennai paarkiraal edho kekkiraal engum irukkiraal இருக்கிறாள் முன்னால் நடக்கிறாள் நெஞ்சை கிழக்கிறாளோ கூட்டத்தில் இருந்தும் தனியாக தெரிந்தாள் தோட்டத்தில்
அமெரிக்கன் ஆக்ட்ரஸ் சிங்கர் அண்ட் சாங் ரைட்டர் ஹேலி ஸ்டேன்ஃபீல்ட் also celebrates her birthday today. Her breakthrough role was as Mattie Ross in drama western film True Grit, for which she was nominated for the Academy Award for Best Supporting Actress. Thereafter, Stainfield gained further prominence for roles in Ender's Game, Romeo and Juliet, Begin Again and 3 Days to Kill. Stainfield made her breakthrough in music after performing Flashlight and Pitch Perfect 2, signing with Republic Records soon after and releasing her debut single Love Myself. Here's Hayley with the song Love Myself.
और आज भारत के बेहतरीन क्रिकेट ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक सलीम दुर्रानी का भी जन्मदिन है। इन्होंने भारत के लिए 29 टेस्ट खेले जिनमें एक शतक और 7 अर्धशतक की मदद से 1202 रन बनाए और साथ ही 75 विकेट भी लिए और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
टुडे इज बर्थडे ऑफ ब्रेंडा ली, हु इज एन अमेरिकन परफॉर्मर एंड टॉप चार्टिंग सोलो फीमेल वोकलिस्ट ऑफ 1960s. शी सैंग रॉकबिली, पॉप एंड कंट्री म्यूजिक एंड हैड 47 US चार्ट हिट्स ड्यूरिंग द 1960s एंड इज रैंक्ड 4th इन दैट डेकेड, सरपास्ड ओनली बाय एल्विस प्रेस्ले, द बीटल्स एंड रे चार्ल्स. शी इज नोन फॉर हर 1960 हिट आई एम सॉरी एंड 1958's Rockin' Round the Christmas Tree, which has become a Christmas standard. At 4 feet 9 inches tall, she received the nickname Little Miss Dynamite in 1957 after recording the song Dynamite when she was 12 and was one of the earliest pop stars to have a major contemporary international following. In 1969, Lee returned to the charts with her recording John One Time, penned by A.L. Doodle Owens and Dallas Frazier. The song reached number 3 on Billboard's Adult Contemporary chart and number 41 in Billboard's Hot 100. She is a Grammy Lifetime Achievement Award recipient. Lee is the only woman to be inducted into both Rock and Roll Country Music Halls of Fame. Let's rock on to Brenda's Rocking Around the Christmas Tree.
House of party, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Uh-huh. और इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।